आप देखिए कि इन आयतों को हम एक किस्म का पूरा कर चुके हैं, लेकिन अब इसको एक थोड़े से और एंगल से समझेंगे। जो बात हुई उसका खुलासा यह है कि दूसरों को दीन की तरफ बुलाना ये कोई बेअकली से करने वाला काम नहीं, जज्बातियत से करने वाला काम नहीं। हम अक्सर कहते हैं कि लोगों को दीन की दावत देते हैं, वो सुनते ही नहीं, बुलाते हैं वो आते ही नहीं, माइंड करते हैं, गुस्सा करते हैं। तो तदरीज अगर आप सामने रखें तो इस आयत में देखिएगा, उदु इला सबीली रब्बिका में पहली चीज तो यह है कि जब भी लोगों को दीन की दावत दें तो दिल में नियत हो कि वो अल्लाह से जुड़ जाए। ये फर्स्ट गोल है। आप इसको इला सबीली रब्बी को हाईलाइट करें, इसके नीचे एक लफ्ज लिखिए गोल। दावा कोर्स है ना, तो दावत का गोल क्या है कि लोग रब से जुड़ जाए। जब ये मोटिव ठीक होगा ना तो फिर बाकी काम भी आसान हो जाएंगे। इसके अलावा किसी और सोच के साथ लोगों को दीन की दावत देंगे ना तो बास दफा वो दीन की दावत से ज्यादा आपके अपने ही किसी नफे और नुकसान की दावत होती है, और ऐसी बात फिर लोगों के दिल पे नहीं आती। दूसरी चीज आप देखिए कि जो यहां बात है बिल हिकमा, पहला मरहला हिकमत का है। पहले तो हमने इसको स्टेप्स में समझा था ना, अब हम समझेंगे लोगों के रवैये और मिजाज की रोशनी में। लोग जो होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं किसी भी सोसाइटी में अमूमन। हाँ, पढ़े लिखे मुल्क या मॉडर्न मुल्क कह लीजिए या खाते पीते मुल्कों में अक्सरियत पहली किस्म के लोगों की होती है। और वो कौन होते हैं? जो किसी भी सोसाइटी के इंटेलेक्चुअल होते हैं, इंटेलिजेंट लोग, जिनको आप कह सकते हैं कि इंटेलेक्चुअल मिनोरिटीज, पढ़े लिखे समझदार, ये वो लोग होते हैं जो बहुत हसास होते हैं, छोटी छोटी बातों पे माइंड कर जाते हैं। आप अपने ऊपर लेके सोचिए, आप जिन लोगों को भी जानती हैं खानदान में या दोस्तों में, तो उसमें वो लोग जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, पढ़े लिखे हैं, खाते पीते हैं, चार लोगों में बड़े फैसले के साथ बात करते हैं, ऐसे लोगों से बात करने के लिए हिकमत की जरूरत होती है। और ये वो गुमगुश्ता मीरास है जिसको मांगने की जरूरत है। यकीन करें, अगर हम गौर करें ना तो हमारे दीन की कोशिशों के बराबर ना होने की और वो नतायज ना निकलने की सबसे बड़ी वजह हिकमत की कमी है। मैं आपको मिसाल देती हूँ कि अगर कोई आपसे कहे कि इस कमरे में जितने टेबल्स हैं इन सब को और इस बड़े टेबल को 5 मिनट के अंदर यहां से निकालकर बाहर रख दीजिए, रिसेप्शन से भी बाहर ले जाए, मेरी इस बात को सुनकर आप में 2-3 किस्म के रवैये निकलेंगे। कुछ तो पूरी बात सुने बगैर और सुनेंगे और माशाल्लाह इताअत के जज्बे के साथ और मोहब्बत से फटाफट उठेंगे, चीजों को हिलाना जुलाना शुरू कर देंगे एक दर्जा। ठीक है, ये बहुत मती और फरमाबरदार लोग होते हैं, आजिज, बस बात सुनी और मान ली। ठीक है, कुछ लोग हैं इसके बाद दूसरे लेवल पे आएंगे। आप 1-2-3 करें तो आपको पता चलेगा कि लोगों से कैसे डील करते हैं। कुछ लोग हैं इस बात को पूरे गौर से सुनेंगे, तवज्जो से, फिर जहन में लाएंगे कि कर तो लेते हैं लेकिन क्या ये मुमकिन है 5 मिनट में इस सारे क्लासरूम को छेड़ना, फिर इस लॉबी से गुजार कर रिसेप्शन से वहां जाना, क्या ये मुमकिन है? वो कुछ असेसमेंट करेंगे और फिर इसके बाद वो ये भी तो देखेंगे ना कि इस हॉल में तो ये चीजें फिट हैं, क्या लॉबी के बाहर छोटी सी जगह में ये पूरी आ जाएंगी? अब इनको थोड़ा सा टाइम लगेगा, फिर भी ये कहेंगे चले हम कोशिश करते हैं। ऐसे लोग हैं जब उठेंगे ना पहले कहेंगे 1 मिनट ठहर जाए, क्या ये बाहर का जो डोर है इसके अंदर से ये बड़ा टेबल गुजर सकता है? ऐसे इनकी इस असेसमेंट में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, लेकिन जब ये थोड़ी सी कोशिश के बाद इधर की मेयरमेंट उधर की कर करा के काम करेंगे तो नतीजा क्या निकलेगा? पहले से फर्क होगा ना। पहली सूरत में क्या है, माशाल्लाह एक्सीलेंट, चल पड़े। इसको आप कह लीजिए कि अल्लाह के नबी की कोई बात सुन के बस मान लेना, अकल नहीं इस्तेमाल करना, चल पड़े, क्योंकि अल्लाह के नबी ने हर बात हमें हिकमत से कही होती, वो कहते ही वो थे जो हो सके। ये दूसरा गिरोह जो है ये काम को हिकमत से करेगा। एक तीसरा भी गिरोह खड़ा होता है, वो कहता पहले आप हमें इसकी हिकमत बताएं, क्यों करें जी, इधर क्या मसला है, उधर क्या होगा, पर्पस क्या है? आप इन 3 किस्म के लोगों को जहन में रखें, ये आपके 3 किस्म के ऑडियंस हैं। अब आप देखिए कि पहले जज्बाती थे, खूबी उनमें भी थी, सब कुछ था, लेकिन मोहब्बत के मारे जज्बात इतने गालिब आ गए कि ठीक बात भी ठीक ना कर सके। और हो सकता है कि जो क्लासरूम बड़ा अच्छा सेटल डाउन था और हम सुकून से पढ़ रहे थे, वो 5 मिनट छोड़ दीजिए आधे घंटे तक भी उधर सेट ना हो और इतने में जाने का वक्त हो जाए, तो फिर जाते जाते के चूके बाहर है कॉमन एरिया, तो उसको अंदर लाना है, तो बाकी आधा घंटा वो क्लास का जो वो वापस अंदर लाएं और कहें कि अब ये क्लास आज नहीं होगी कल होगी। ऐसे लोगों में मोहब्बत भी है, जज्बात भी हैं, लेकिन हिकमत की कमी है। याद रखिए, जिंदगी में सबसे मुश्किल चीज जो मांगी जाए वो हिकमत ही है। इल्म भी आपको बहुत मिल जाता है, किताबों से इल्म मिल जाएगा, कैसेट से इल्म मिल जाएगा, नेट से इल्म मिल जाएगा, हिकमत जो होती है ना, ये जिंदगी के तजुर्बात का निचोड़ होती है। इनमें से अगर आप देखें ना, तो तीन गिरोहों में सबसे अकलमंद गिरोह कौन सा है? दूसरा गिरोह। तीसरा नहीं, तीसरे ने अकल शुरू कर दी इस्तेमाल, वजह बताएं क्यों, अच्छा अगर ना करें तो क्या होगा, क्या ये फर्ज है आपकी बात माने, ये सुन्नत है या नफिल है, हराम तो नहीं, सजा तो नहीं मिलेगी, पुलिस तो नहीं हमें पकड़ के ले जाएगी, ये वैसे करने वाले लोग होते हैं। अब आप अपने आगे लें, जब भी दीन की दावत देने के लिए नबी निकले या आज के लोग में निकले, तो मुख्तलिफ किस्म के लोग आते हैं जो बहुत ज्यादा सवाल जवाब करते हैं ना, वो तो अमूमन वो होते हैं जिन्होंने मानना नहीं होता, अक्कल इस्तेमाल करते हैं, कोई ऐसी बात कह दें ताकि के अच्छा इस वजह से फिर अब हम ये काम नहीं करेंगे। ये जो पहली सतह के लोग थे ना, ये बेचारे ऐसे ही होते हैं, जिस तरह उन्होंने बेतरतीबे निकाले थे, थोड़ी देर बाद वो बेतरतीबे वापस भी ला के फिर आपसे माजरत भी कर लेंगे। ऐसे लोग निस्बतन आसान होते हैं, इनके साथ बात करना बहुत आसान है, तबलीग करना। ऐसे लोग अगर आपके ऑडियंस में हो, दर्श देने आप कहीं जाए, चेक करें जहां भी बात करती हूं, अब आप दर्श नहीं दे रहे अभी, अभी आपको मौका भी नहीं मिलता, लेकिन आप बात पहुंचाने जाते हैं, या अगर आप में से वो लोग जो अब इस काम पे माशाल्लाह फायज हैं, जब भी किसी गिरोह में बात करने जाएं, सबसे पहले देखें मेरे मुखातिब कौन है। अगर तो इंटेलेक्चुअल, पढ़े लिखे तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से बात करने वाले लोग हैं, तो यकीन करें 10 जुमलों में से एक जुमला बोले, जुमलों की जगह पे लफ्ज इस्तेमाल करें, फिक्रे ना बोले ऐसे लोगों के सामने, क्योंकि ये बहुत हसास लोग होते हैं। ये ना तो जज्बाती तकरीरों से खुश होते हैं, ना लच्छेदार वाज से, खूबसूरत वाज हो, लोग शेर पढ़े, घूमे झूमे, ये लोग नहीं मानते। ऐसे लोग कब मानते हैं? जब उनको लॉजिक दें, इंटेलेक्चुअल बात करें, सोच नजरिया इनके सामने जो रखे वो ऐसा रखे कि ये कायल हो जाएं कि वाह बात तो सच है। हम तो इनको मौलवी कहते थे, लेकिन इनको तो इंग्लिश भी आती है, इनको तो साइंस भी आती है, अच्छा इन्होंने जो बात की ये है सच, ये बिल्कुल जिसको आप कहेंगे कोल्ड फैक्ट्स से मानते हैं, जिसको भी दीन की बात करेंगे। और हिकमत वो चीज है कि जिसको अगर मैंने और आपने पा लिया, तो ना सिर्फ ये कि हमारी दीन की जिंदगी खुशगवार होगी, हमारी दुनिया की भी जिंदगी खुशगवार होगी। हिकमत कहते हैं मुनासिब वक्त पे मुनासिब फैसला करना। और आप में से हर एक अपने अपने लेवल को चेक करे, अपने अपने रैंक को, अपनी अपनी जगह को, और पूछें कि अमूमन नतायज ठीक क्यों नहीं निकलते, तो आप देखेंगे कि जिस वक्त जो फैसला करना था वो नहीं किया, जो काम करने का वक्त था उस वक्त प्लानिंग करने बैठ गए, जो प्लानिंग का वक्त था उस वक्त सो गए, जो सोने का वक्त था उस वक्त रात को जागते रहे। तो हिकमत मुनासिब वक्त पे काम करने का नाम है, ऑर्गेनाइज्ड, सही बात सही वक्त पे सही तरीके से और सही इंटेंसिटी की। आप तबलीग करने गए, रगड़ा ही दिए जा रहे हैं, रगड़ा ही दिए जा रहे हैं, एक ही बात पे रगड़ा ही रगड़ा, पहली दफा अगला बंदा सुनते कहते वाह बात इन्होंने बड़ी खुदा लगती कही है, आधी बात करके आगे चले आप उस पर, फिर एक बात, फिर दूसरी बात, फिर उनको जहन्नमी कहते हैं, फिर काफिर कहते हैं, वही बात जो पहली दफा आपकी जुबान से सुन के उनका दिल हिला था ना, आप देखेंगे जब उसको आप बार बार रगड़ने के अंदाज में शुरू होंगे और उसको ताने देंगे और उसको ये कहेंगे और आप ऐसे, तो बाद दफा लोग बैड फील करते हैं। तो लिहाजा जब कभी ऐसे लोगों से बात करें, थोड़ी सी बात करें चलें, क्योंकि पिछला हिस्से में हमने जो इसका एंगल देखा है कि शुरू में कच्ची कच्ची बात करें, सिर्फ इशारे दें, जैसे घर बनता है तो पहले कच्ची कच्ची बुनियादें लोग डालते हैं, फिर उसको पक्का करते हैं, फिर इसके बाद जब हिकमत के साथ ये काम करेंगे तो यकीन करें कि बहुत फायदा होगा। हिकमत के सबब किस इंसान की सोच और इल्म में पुख्तगी आती है, उसकी गुफ्तगू कॉम्प्रीहेंसिव हो जाती है, जामे। कुछ लोगों को देखे नपे तुले जुमले बोलते हैं और कुछ में आ की का इतने बीच में पॉजेज, इतनी छोटी बड़ी बातें खुद नहीं पता कहने के आए थे, कुछ जज्बाती होते, समझा नहीं पा रही, समझ नहीं, कैसे बताऊं भैया, पहले ठीक तो हो, नॉर्मल तो हो। ये हिकमत के खिलाफ होता है, तेज तेज बोलते जाना ये हिकमत के खिलाफ है, लंबी लंबी बातें करना हिकमत के खिलाफ है। आप अपनी आवाज को एक ही टोन में रख रहे हैं कि अगला सो जाए, हिकमत के खिलाफ है। अब मैं इसमें वो पढ़ाने की बातों पे नहीं करती, क्योंकि ये एक अलग वर्कशॉप होती है अल्हम्दुलिल्लाह, कि जिसमें इल्म देने वाले या जो लोग स्टेज पे या माइक पे आते हैं उनको किन चीजों की जरूरत होती है। हम इस वक्त सिर्फ अपने मौजू के एतबार से एक जनरल बात करते हैं, लेकिन दूसरे बंदे के जहनी रुझान को देखना, उसकी तरजीहात को देखना, वो किस माहौल से आया। आपका बच्चा अपने दोस्त के साथ खड़ा है जो उसकी नजर में सदर ओबामा से भी बड़ी शख्सियत है, और आप उसके सामने बच्चे को डांटना शुरू कर देती हैं, बुरा भला कहती हैं, बस समझे कि आपने अपने बच्चे के दिमाग पे एक ऐसा बोझ डाल दिया कि आपकी सोने जैसी बात भी नहीं सुनेगा। तो बड़े लोग कहते थे ना कि पहले तोलो फिर बोलो, तो ये हिकमत है। इसके साथ बात करने की जरूरत होती, कब कहां बात छेड़नी, अब चुप करने का वक्त है। जितनी लड़ाइयां होती हैं ना घरों में या बाहर या इदारों में, ये हिकमत की कमी की वजह से होती है। मैं इसको ऐसे महसूस करती हूँ कि जैसे आपको केक बनाना है, केक के अंदर इंग्रेडिएंट्स भी अहम होते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी अहम होता है, और कितनी देर उसको ओवन में रखना है और ओपन रखना है या ऊपर से ढक के बनाना है, ये सब चीजों के बाद ही केक बनता है ना। कहीं भी कोई कमी कर दें, अंडे आप 6 की जगह 2 डाल दें, केक सख्त है। टेम्परेचर आप इकट्ठा एकदम उसका 250 पे कर दें और पता चले ऊपर से काला हो गया अंदर से भी दूध है, ये भी हिकमत के खिलाफ है। केक बनाए ऊपर से ढक ढका के बना दें, ये भी हिकमत के खिलाफ है। तो हर चीज को उसकी जगह पे रखें, हर बंदे का मिजाज चेक करें वो किस बराबर है। फिर अगला दर्जा क्या आता है, मुआवजा। ठीक है, मुआवजा क्या है, खूबसूरत वाज। वाज कहते हैं वो बात जो दिल में उतर जाए, नरम बात, गुदास वाली बात। ये अवामुन नास के लिए होता है, किसी भी माशरे में अक्सरियत ऐसे लोगों की होती है जिनकी अकल में कोई इतना क्रिटिसिज्म का मादा नहीं होता, ना वो बहुत अकलमंद होते हैं ना बहुत मंतकी होते हैं कि आपकी हर बात को तोले झोले। पब्लिक में जब बात करें ना तो इमोशनल बात करें, जज्बाती, ना उनको आपका फलसफा अच्छा लगता है। अब आप दर्स देने बैठी और आप फलसफे की बातें शुरू कर दें। मिसाल है कि आप देखिए ना कि जैसे आप कुछ लोग जो अमेरिका से पढ़ के आए हैं किसी यूनिवर्सिटी में, आपको वहां कोई दर्स के लिए बुलाता है, अब आप वहां जाके दर्स देती हैं, तो अब जा रहे वो तो अमेरिका की यूनिवर्सिटी का एक शहर भी तो रखते हैं ना, उनको पता अच्छा पता नहीं ये कोई पाकिस्तानी खातून आ रही है, इनको क्या पता होगा। और आप जब जाए तो हिकमत में फिर आपका पहन ओढ़ना भी, आपका लिबास भी है, आपका हाल उलिया भी, पहले तो इससे ही वो परेशान हो जाएंगे कि ये कोई होंगी गांव की औरत जिनको बोलना भी नहीं आता और बात भी नहीं करनी आती और सड़प सड़प करते स्लीपर पहन के आप चली जाए। नहीं, याद रखिए हिकमत के दर्ज है, आपका पहन ओढ़ना, आप किस दिन क्या पहन के जाते हैं दर्ज में, इतना गहरा ताल्लुक है इसका हिकमत के साथ कि आप सोच नहीं सकते। लोगों का माइंड ट्रैप होता है। खैर वो तो एक अलग बात हो गई, और दूसरी तरफ ये भी पता चला कि आप ऐसे गई जैसे पार्लर से तैयार होकर गई हैं और बार बार अपना स्कार्फ और पीछे उसका जुड़ा ही ठीक करते हैं, ये भी हिकमत के खिलाफ है। अपनी अंगूठियां घुमा घुमा के दिखाएं, ये भी हिकमत के खिलाफ है। आप पहन सकते हैं लेकिन जब आप लोगों को बात करें उस वक्त ना पहने, ताकि लोग इसमें ही ना खो जाएं। सिर्फ छोटी छोटी मिसालें आपको बता रही हूं। अब आप वहां गए, आपको पता है कि ये लोग तो माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, आपको वहां क्या बातें करनी चाहिए, आप पढ़ी लिखी बातें करें। आप उनको साइकोलॉजी की बात बताएं, फ्राइड की साइकोलॉजी की बात बताएं, वो कहेंगे अच्छा इनको फ्राइड का नाम आता है, ओह अच्छा हम तो समझे थे हम ही कुछ ज्यादा साइकोलॉजी सीख के आए। अब आप यही दर्स के नोट्स पकड़ती हैं या अपनी बात पकड़ती हैं और पाकिस्तान की किसी कच्ची बस्ती में जाती हैं दर्स देने, वल्लाह ही अगर आपने वहां फ्राइड का नाम लिया वो कहेंगे ये हमें कोई फ्रॉड सिखाने आई, ये फ्रॉड क्या होता है, बिलीव में देखे वो सीधे साधे लोग हैं। आप उनको गाय की भैंस की बर्तनों की तवे की चिमटे की मिसालें दें, ये हिकमत के मुताबिक माहौल देखें। दुखी मौका है किसी कम वाले घर में लोग, तो आप उनको ऐसी बात करें जो सो का दिल मित्र। खुशी वाले माहौल में तो आप जाके मौत पे दर्ज दे दें कि खुश क्यों हो रहे हैं, शादी पे मौत आने वाली है, ये भी हिकमत के खिलाफ है। जी बिल्कुल, हर चीज, लोगों ने खाना खाया हुआ है कि नहीं खाया हुआ, इससे बाद क्या होना है, इससे पहले क्या होना है, बिलीव मी लोग तो जानते भी नहीं है कि दर्श देने से पहले क्या क्या चीजें देखनी पड़ती हैं, फिर एक लफ्ज मुंह से निकलता है, फिर भी किसी को बुरा लग जाए तो लग जाए। अक्सर लोगों की मैंने बात सुनी है, कहते हैं दर्श में गए लड़ाई हो गई, बहस शुरू हो गई, झगड़ा हो गया, सुने आपने, बाद में बात संभली नहीं, ये बन। तो मैं इनको पूछती हूँ कि अल्लाह ताला मतलब मुझे बड़े बोल से बचाए, बहुत सारी कमियां और हद से ज्यादा है, लेकिन मेरे साथ तो आज तक कोई इस तरह का सानिया इस तबलीगी सफर में नहीं हुआ, पिछले 15-20 साल हो गए, मुझे तो नहीं कभी किसी ने झगड़ा किया मेरे से, वजह के तेल देखो तेल की धार देखो, लोग करते हैं बहस, आप उस सवाल को खेलते क्यों है? जैसे आप देखिए एक अच्छा प्लेयर होता है ना, उसको पता था किस बॉल को खेलना है किसको जाने देना, आप हर सवाल को एंटरटेन क्यों करते हैं? जो लोग आपसे सवाल पूछते हैं अल्लाह के हुक्म से तौबा करें, बहुत थोड़े होते हैं जो इल्म के लिए पूछते हैं, कुछ वेरिफिकेशन के लिए पूछते हैं कि पिछले स्पीकर ने ये कहा था जरा अब हम इनका भी व्यू ले लें, कुछ पूछते हैं दूसरों के लिए, पर्ची आ जाती है जी जरा ये बताएं, और आप उसमें होता है जी वो जरा वर्ड, कुछ लोग तो पूरा मेन्यू पेश करते हैं आपके सामने, वो आपको हमारे घर में दर्श है ना तो पर्दे की भी बात कर दे, अच्छे कपड़ों की भी कर दे, वो मेरी नन के बेटे की सालगिरह और ये जरा सालगिरह पे भी बात करे, यानी वो एक प्लेटर चाहते हैं कि उसमें सारी चीजें डाले, और नतीजा पता क्या होता है, सारे जो अपने साथियों को शर्मिंदा करना, और फिर जरा आपने ना समझी में अगर उनकी किसी बात को छेड़ दिया जो उनकी सास में, तो फिर यूं आंखें मटका कर उनको देखेंगी, सुनो अम्मा तुम्हें सुना रही है। कभी ऐसे सवालों को एंटरटेन ना करें, कुछ सवाल तो दूसरों को शर्मिंदा करने के लिए लोग पूछते हैं दरसों में, कोई कहता है आपसे कोई सवाल पूछता है, अच्छा कुछ आपका फिकी मिजाज चेक करते हैं, आपका मसला क्या, आपका मिजाज क्या, अच्छा आप पूछ ले ताकि देखा हमें पहले ही शक था ये वहाबी है, ये भाई ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि आपको वो ये कहेंगे इनको जवाब नहीं आता, हमें नहीं आता फिर क्या। देखिए आपका जरूरी नहीं हर सवाल का जवाब दे, कुछ लोग सिर्फ इसलिए सवाल पूछते हैं कि कोई दो चार लोग जो इस महफिल में वो आपसे बदजन हो जाए कि आपकी तो सोच कजा उमरी क्या थी नमाज, हर बंदा जो आपसे ये सवाल पूछे ना जरा कजा उमरी पूछ ले तो समझे वो आपको चेक करने आया, वो लिसनर नहीं वो एग्जामिनर बन के आया, कह दें बाद में बात होगी, ये कोई मौका नहीं। ज्यादा से ज्यादा लोग शर्मसार होंगे ना, शर्मिंदा करेंगे जी इनको आता नहीं था इसलिए नहीं बताया, हमें नहीं आता था फिर क्या हुआ, हर एक बात हर एक को तो नहीं आती, लेकिन बताने से फितना ज्यादा होगा। तो लिहाजा जब वहां जाएं बात अच्छी करें, लोगों के जज्बात को अपील करें, शुरू की बातें दिल में उतर गई ना तो बाद में बड़ी बड़ी बातें जो है वो समझ जाएंगे। जैसे देखिये अब आज मैं आपसे बात कर रही हूँ, इत्तेफाक ही है कि अब आज हमारे पास न्यू स्टूडेंट्स भी है, सीनियर्स भी हैं, मिडिल वाले भी हैं, और वो भी हैं बल्कि वो इस वक्त सामने नहीं है जिनकी ये क्लास है। अब ये सारों को टैकल करना ये भी तो एक हिकमत की तकाजा है ना कि किस तरीके से किस बात को करना है। मकसद सिर्फ एक बात याद रखे, मैं अक्सर सोचती हूँ कि तबलीग का मकसद क्या है, या अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर का मकसद क्या है, तबलीग को ले लें तो पहुंच जाए बात, ठीक है, बालागा जब लीगो तबलीग कन्वे करना मैसेज। जब भी किसी को किसी चीज पे रोके टोके तो पूछें कि क्या बात अगले को पहुंच गई है, मेरा ये स्टाइल पहुंचाने है लता या अगले के कानों से ऊपर गुजर गई। बात मैं चीख रही होती है बच्चों को समझ ही नहीं आती, कहती अम्मी मैं समझ ही नहीं आ रहा आप कह क्या रही हैं। दूसरा मकसद क्या होता है कि लोग बुराई से रुक जाए, पूछें इस वक्त इस बात को कहने से क्या ये बुराई से रुक जाएंगे, बाद लोग तो चिड़ में फिर और करने लग जाते हैं। तो अगर आपकी तबलीग से नतीज ठीक नहीं निकल रहे तो इसका मतलब यह है कि आपका तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं है, ना तो साथी की जो मुखालिफ है आपका उसकी तहकीर करनी है, ना तजलील करनी है, ना उसको छोटा समझना, सरासर खैर ख्वाही, जो बात दिल से निकलती है ना दिल में आती है, वो फारसी में कहते हैं ना क्या अस दिल खैस्त बर दिल रस्त, कि जो दिल से बात निकलती है वो दिलों में जाती है। तो आम लोगों से बात करें, सॉफ्ट बातें, छोटी छोटी बातें, अब ये नहीं कि आप इतने साइंस के फिगर्स दें कि उनको लगे ये फिजिक्स की क्लास है और आप फिगर्स पे फिगर दे रहे, पता चला कि आगे सारे वो लोग बैठे हैं बेचारे जिनको ये भी नहीं पता कि जमीन गोल है कि नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद आप देखिए तीसरा दल जाए इधर जा दिल हम बिल्लती अक्सन, हाँ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने मिशन बनाया हुआ है अल्लाह की मखलूक को गुमराह करने का, फासिकीन आप कहने गलत चीजें फैलाने लगे, कुछ तंजीमें बनी हुई हैं पेशावर लोग जो बकायदा लोगों को दीन से दूर करते हैं, फोहश फहाशी मीडिया के जरिए या कुछ ऐसी चीजें कि जिसमें आप शक नहीं कर सकते कि ये अंदर से कैसे हैं और बाहर से, वो अपने मुंह से बता रहे हैं कि हम नंगे कपड़े पहन के ये काम कर रहे हैं तो हम कोई इतने सीधे लोग नहीं है, यानी बिल्कुल जिसको आप कहें कि सोच लेके जो उम्मत मुस्लिमा को बिगाड़ना चाहता है। फिर उनसे जा दिल हम बिल्लती ही आसन, फिर उनसे पूछिए आप ये काम क्यों करती हैं, आपको पता कि आपके इस काम से कितना नुकसान होता है, लेकिन याद रखे कि इसमें करने के बिल्लती आसन ये आखिरी दर्जा होता है, जुदाई इख्तियार होगी इसके बाद, इस तरह बात करें कि दोबारा भी मिल सके। आप देखिए इसकी मिसाल आज के दौर में एक अच्छी बात के लिए कह रही हूं, मैंने बहुत नहीं सुना लेकिन मैंने उनके बारे में ये सुना जाकिर नायक के दूसरों की किताबों के रेफरेंसेस भी देते हैं ना, हिंदुओं को उनकी किताबों के क्रिश्चियंस को उनकी, ये है जा दिल हम बिल्लती अक्सर, उनके अकायद और उनकी बातें हवाले खुद पेश करो, उन लोगों को खुद नहीं पता हमारी किताबों में ये कुछ लिखा है, तो इससे अगले को पता चल जाता है ना कि इस शख्स के पास इल्म है ये ऐसे नहीं बोल रहा, फिर उसके बाद जब बात करनी पड़े उसको ऐसे तरीके से करें कि आपके बात करने में बदतमीजी ना हो। मसलन आपने दर्श दिया कोई भी, पीछे से कोई बीच में से एक बंदा बोला, वो बोलना शुरू हो गया, अब आप उससे झगड़ना शुरू हो जाए, लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि आप दोनों में से ना समझ कौन है। इंग्लिश में कहते हैं कि नेवर आर्ग्यू विद दी फूल, पीपल माइट नॉट नो दी डिफरेंस। बेवकूफों के साथ झगड़ा ना करें, दूसरे को पता ही नहीं चलेगा कि बेवकूफ वो था या आप थे। सारी बात का खुलासा, अपनी जुबान का इस्तेमाल सोच के करें। अब आप कहेंगे ये सारी बातें मेरे लिए क्योंकि मैं दर्श देती हूं, नहीं, हर बंदा किसी ऑफिस में बैठा है, किसी रिसेप्शन पे बैठा है, किसी जगह बैठा है, हम में से दीन का नुमाइंदा बन के 100 दफा सोचे फिर बोले। नो जोक्स, नो फ्रेंकनेस और नो तीवरी और ना चिड़चिड़ापन, यानी ये वो चीज है जो लोगों को हमसे कट डाउन कर देती है। समटाइम हमें नहीं समझ आता लेकिन लोगों को हमारी कोई बात अच्छी नहीं लगती। आप देखिए जो सिंगर्स होते हैं ना वो अपने गले की बहुत हिफाजत करते हैं, खट्टा नहीं खाते, ठंडा नहीं पीते क्योंकि गला खराब हो गया तो बोलेंगे कैसे। सर्जन अपने हाथों की बड़ी हिफाजत करते हैं क्योंकि उंगलियों में अगर कोई कट लग गया तो जर्म्स पड़ेंगे तो ऑपरेट नहीं करेंगे। दाई दीन को अपनी जुबान की हिफाजत करनी चाहिए, और दाई दीन से मुराद एकेडमिक भी है और मैनेजमेंट भी है, बल्कि मैनेजमेंट का तो वास्ता पहले पड़ता है। एकेडमिक तो लोग आके इस क्लास रूम में बैठ के सुनेंगे ना बातें, पहली रिसेप्शन से ही बात शुरू हो जाएगी। शहद वाले चमचे को अगर आप जहर में डुबो दें तो मीठा नहीं रहेगा। बाद लोग अपने इल्म की कमी को आवाज की सख्ती से दूर करना चाहते हैं, गुस्सा सख्ती। जैसे मैं किसी जगह गई तो औरतें किसी और ही मूड में थी तो मुझे तो इस तरह आदत ही नहीं बात करने की, तो मैंने कहा कि ये खामोश होते हैं जितना ये टाइम ले लें फिर मैं बात करूं। तो एक बुरी सी खातून थी और उनके कॉन्फिडेंस से मुझे लगा, बाद में पता चला कि शायद वो दस्तूर्स भी देती हैं। मुझे कहने लगी थी आप इनको सुनाना, मुझे बड़ी बड़ी रफ टोन में उन्होंने बात की, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के लिए थी तो मुझे बुरा नहीं लगा। कहती जी आप करें ना इनको शुरू, सुनानी शुरू करें इनको बातें, ये खुद ही चुप हो जाएंगी। मेरे साथ ही बैठी थी बिल्कुल, मैंने कहा मुझे बातें सुनाना नहीं आता, मैं बातें नहीं सुनाती। कहती ये औरतें ऐसे नहीं थी चुप होती होती। खैर मैं खोली, मेरे साथ जो भी थी तो मैंने लैपटॉप खोला, तो फिर उन्होंने मेरी तहकीर के लिए कहा अच्छा अभी इन्होंने अपने पुर्जे शुरजे भी तो जोड़ने हैं ना, यानी अब ये देखे इतनी रफ टोन, मुझे भी सुना रही लोगों को भी सुना रही। बिल्कुल मेरे साथ बैठी थी, मैंने कहा आंटी जी मैं तो अभी सेट नहीं हूं, आप थोड़ा सा इनको सुनाए ना बातें। कहती मैं तो इनको सुनाती रहती हूँ, एक मानती मुनती कोई नहीं है। यकीन करें आप, मैं वल्लाही अगर मैं उस वक्त अल्लाह के लिए ना गई होती तो मैंने अपना बस्ता उठाना था तो वापस आना था कि आप इनके लिए काफी हैं। लेकिन जब मैंने बात शुरू की, मुझे घर वालों ने जो इंस्ट्रक्शन दी हुई थी मैंने तो वही करना था। बिलीव मी कि फिर मुझे था कि जिस तरह ये शुरू में इतना बोल रही थी कि मुझे बोलने ही नहीं दे रहा, या मुझे प्रवोक कर रही थी बोलो तो मैं नहीं बोली, और इनको गुस्सा चढ़ रहा था कि मैं क्यों नहीं बोल रही। मेरे तो दर्स के बीच में इन्होंने 20 बार बोलना, मुझे ये शक था, एक दफा नहीं वो बोली माशाल्लाह। इतने सुकून से उन्होंने सुना, इतने आराम से बात सुनी कि मैंने अल्लाह का शुक्र किया कि कोई हादसा नहीं हो गया। मैं मेंटली प्रिपेयर थी कि मुझे टोकेंगी बीच में। तो असल बात है, मैंने सोचा जिस अंदाज से बात करी वल्ला ये मुझे करती तो मैं भी ना इनकी मानती, ये कोई तरीका क्या आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं, इन्होंने सुनना कोई नहीं तो फिर भी आप मेरी सुने। तो हमेशा सोचें जो आपके सामने बैठा ये पत्थर नहीं है, इसके दिल में नरम दिल है, चाहे उसको अपना कोई रिश्तेदार कहे, चाहे आपका छोटा बच्चा है, शोहर है। बाज़ दफा हम अपने शोहरों के उस्ताद बने बैठे होते हैं और फिर हम कहते हैं हमारी सुनते नहीं है। जैसे एक सिस्टर थी तो अपने बारे में खुद बता रही थी कि मैं बहुत बोलती हूँ, जब मैं अपने मियाँ के आगे बोलती हूँ मैं चुप ही नहीं होती, कहती वो डर जाते हैं मुझसे। तो वो तो आपके शर से डरे, जल तुझे लाल तू आई बला को डाल तू, वो कोई मानते हैं? तो मनवाना नहीं है, बस आज नरमी रो पड़े। मैं कहती हूँ हिकमत का सबसे खूबसूरत अंदाज है ये, आप इन सारों को जमा कर लें, हिकमत मौज और जादिलम बिल्लती बिल हसन कह के जहां लगे के बाद से कुछ नहीं होना वहां दो आंसू बहा दें, बस चुपके से खामोश रहे कि अब मैं आपको क्या कहूं, मैं आपको कैसे समझा, मैं नहीं आपको समझा सकती। बस फिर देखे आपका वहां से उठना अगले इश्क के शोर को झंझोड़ देगा। अल्लाह तो दुश्मनों की बातें करते हुए कहते हैं कि वला तसुब्बुल्लज़ीन यदून मिन दूनिल्लाहि फयसुब्बुल्लाह अदबं बिगैर इल्मिन, सूरत अल-अनाम की आयत 108 में आता है कि इन मुशरिकों के खुदाओं को या इनके बुतों को तुम बुरा भला ना कहा करो बिला सोचे समझे, क्योंकि ये अल्लाह को बुरा कहने लग जाएंगे। کیونکہ آپ ان کے خدا کو برا کہیں گے، وہ آپ کے اللہ کو برا کہہ دیں گے. تو بہرحال یہ بہت اہم کام ہے، بغیر سوچے سمجھے ایسے تیر نہیں پھینکنے چاہیے. اور ایک بات یاد رکھے، اگلی آیت کی طرف اب ہماری توجہ ہے. بعض لوگ تبلیغ کے لیے بیٹھتے ہیں نا، تو اس جگہ بیٹھنے کو محاذ سمجھتے ہیں. آ گیا نا مائک ہاتھ میں، کرسی بھی میز بھی، اب جاتا کون ہے؟ جو دوسروں کو سناتے ہیں، کھری کھری سناتے ہیں، اور تبلیغ کے میدان کو وہ سمجھے جہاد کا میدان سمجھتے ہیں. اللہ ایسے لوگوں کو کہتے ہیں. آیت 126 کو دیکھیں، خاص ماحول ہے لیکن مفہوم سمجھ آئے گا، دیکھیے گا. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، پھر اگر تم کو تکلیف دی جائے، یعنی ہم مسلمانوں اگر تم بدلہ لینا چاہتے ہو، تو فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، تو پھر اسی قدر بدلہ لے لیا کرو جس قدر تم کو تکلیف دی گئی. یعنی اگر وہ تمہاری کو مسجد ہی گرا دیتے ہیں تو تمہارا دل چاہتا ہے تو پھر ان کا بھی ایک مندر گرا لو. مثال دے رہی ہوں آپ کو کہ جب تبلیغ کے نتیجے میں یا مسلمانوں کو خام خواہی کو چھیڑے، اس طرح سے چھیڑے کہ اگر مسلمانوں پہ زیادتی کرے، تو جتنی بات اس نے کی ہے نا اتنا تم بھی اس سے بدلہ لے لو. وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، ہاں اگر تم صبر کرو گے تو یہ صبر کرنے والوں کے حق ہی میں بہتر ہے. کیا سمجھ آئے اس میں؟ کہ دائی دین کو غصہ نہیں کرنا، اشتعال میں نہیں آنا، انگلش میں آپ کہہ لیجئے کہ اگریسو نہیں ہونا. جتنا نقصان مسلمانوں کو ریئیکشنری ہو کر آتا ہے اتنا ویسے نہیں آتا. ایک بڑا معروف ڈسپیوٹ چل رہا ہے، اب پتہ نہیں ہے کہ نہیں، لیکن پرانا سنا ہوا ہے، بابری مسجد کا، مسلمانوں اور انڈیا کے بیچ میں، پاکستانیز اور انڈیا میں، کہ مسلمانوں کی بابری مسجد انہوں نے گرا دی تھی. سنا ہوگا آپ کو اس کی ڈیٹیل پتہ؟ یعنی کچھ اس طرح کی حالات ہیں، کوئی لمبی ڈیٹیل کی ضرورت نہیں، لیکن میں آپ کو فرق سمجھانا چاہتی ہوں. ایک موقع پہ کچھ ایسے حالات ہوئے کہ مسلمانوں نے ان کا مندر توڑ دیا، تو اس کے نتیجے میں انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے آپ کی مسجد توڑ دی، ختم ہو گیا. وہ مندر میں بھی پتہ نہیں لوگ جاتے تھے کہ نہیں، اور وہ مسجد بھی کوئی آباد تھی نہیں. آج تک اس نام پہ کتنے سینکڑوں مسلمان مارے گئے اور ان کے کافر مارے گئے. فائدہ کس کو ہوا؟ اتنی درگاہیں موجود ہیں، آپ اس کو توڑیں، جو مسجدیں ہیں اس کو آباد کریں. کبھی بھی یاد رکھیں، کسی کے لیے یہ نہ بات کیجئے کہ آپ اس کو چڑچڑائیں. یہ جو ہمارے یہاں بڑا ایک معروف جملہ ہے، یہ بڑا غلط جملہ ہے، جو میرا خیال ہے محمد بن قاسم کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے سومناتھ کے مندر توڑ دیے. کس کا جملہ، کسی کو یاد ہے؟ کہ جس نے کہا کہ میں بت فروش نہیں ہوں، بت شکن ہوں. مجھے یاد محمود غزنوی کا جملہ ہے. آپ کو پتہ کہ اس کے پیچھے پوری ہسٹری ہے. یہ جو جملہ آپ کہتے ہیں نا کہ میں بت شکن ہوں، بت فروش نہیں ہوں، یہ آخری جملہ ہے. جادل ہوں بلتی یاخسن، آپ انڈیا میں جائیں تبلیغ کرنے اور ساتھ آپ تھوڑے لے جائے اور کہ پہلے تمہارے بت توڑوں گا پھر تم سے بات کروں گا. کیا اللہ کے نبی نے ایسے بت توڑے؟ 13 سال مکہ میں دین اسلام کے آنے کے باوجود اسلام کا کام کرتے رہے، کعبہ کے بتوں کو نہیں چھیڑا. 10 سال مدینہ کے، جس میں سے صرف 2 نکال دیں. سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا جب مسلمانوں کی اتھارٹی ہوئی، پھر بت ٹوٹے. کوئی باہر سے آئے اسی ہمارے ادارے میں اور باہر سے آ کے کہ یہ آپ نے کیا سیٹنگ کی ہے، پیچھے ہو جائے اور اپنی مرضی سے کرسیوں کو ادھر، میزوں کو ادھر صرف کرنا شروع کریں، ہمیں کیسا لگے گا؟ آپ جہاز میں جاتے ہیں اور اپنی مرضی سے کرسیوں کو ادھر ادھر کرنا شروع کر دیں. مینجمنٹ کو اپنے کنٹرول میں لینا، یہ تو خانہ جنگی ہوتی ہے اور یہ تو کسی کا کنٹرول لینے والی بات ہے. اسلام کبھی بھی نہیں چاہتا ایسا کہ ہم کام کریں. تو اگر کوئی تم سے زیادتی کرتا ہے تو صبر ہی کر لو. آپ کو کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین پھیلایا تھا یہ صبر سے پھیلایا تھا، اور یہ وہ صبر تھا کہ جس کا اجر ملا. طائف والوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ کیا کیا سب کو پتہ ہے نا، اب جنہوں نے دارا قرآن سنا ان کو تو اچھی طرح ہی پتہ ہے. لیکن اللہ کے نبی نے کیا کہا اس وقت فرشتے کو جب اس نے کہا کہ آپ حکم دیں میں پوری قوم کو ان 2 پہاڑوں کے بیچ میں پیس دوں، تو آپ نے کیا کہا؟ کہ نہیں، شاید ان کی نسلوں میں سے کوئی ایک اسلام پہ آ جائے. اور آپ کو تک کہ ان کی نسلوں میں سے محمد بن قاسم آئے تھے جنہوں نے سندھ پتہ کیا. آج میں اور آپ اگر ایک آزاد سندھ میں سانس لے رہے ہیں تو یہ اللہ کے نبی کا وہ صبر تھا جو طائف کے موقع پہ کیا. وما صبرک الا بالله واصبر وما صبرک الا بالله، آپ تو صبر کیجئے، آپ کا صبر تو اللہ ہی کے سہارے سے ہے اور اس کا اجر تو آپ کو اللہ ہی دے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر آج کیچڑ اچھالا جاتا ہے. بہت سارے لوگ کوسچن کرتے ہیں کیا کریں، بائیکاٹ کریں، کیا کریں، اس کا کریں. मैं कहती हूँ ये तो जुमला बोला ना मैंने कि जात पे कीचड़ उछालना, अल्लाह के नबी के तो ऊपर कीचड़ फेंकते थे। मक्का में एक औरत थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जिस रास्ते से गुजरते थे ना, उसको पता था किस किस वक्त में गुजरते हैं। एन वो वक्त जब अल्लाह के नबी वहां से गुजरते तो ऊपर खिड़की में से कचरा फेंकती आपके सर पे, ये फेंकती थी, आप उसी कचरे को उठा के फेंक के आगे चले जाते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि आप वहां से गुजरे तो किसी ने कचरा नहीं फेंका, दूसरा भी दिन हुआ। एक दिन जब ऐसा हुआ तो आपने सोचा कि ये क्या हाल है, आपने पूछा कि वो औरत किधर है, कहा अल्लाह के नबी वो बीमार है। बीमार है, चलो उठो। आप उसका हाल पूछने उसके घर चले गए, और जब उसका हाल पूछा तो पता चला कि वो बीमार थी। इतनी मुतासिर हुई आपके अखलाक पे कि मुसलमान हो गई। कौन ऐसे अखलाक से मुतासिर ना हो कि कूड़ा फेंकने वालों को आप इस्लाम की दावत देते थे। और आपको सुनाई थी गालिबन पीछे भी वो ज़ईफ़ा की कहानी कि किस तरह से अल्लाह के नबी की वजह से शहर छोड़ के जा रही थी, लेकिन अल्लाह के नबी ने उसको इस तरह हेल्प दी, उसका सामान उठाया और उसके बाद वो मुसलमान हो गई। उम्मे जमील क्या करती थी, अबू लहब की बीवी, आपको कहती थी इन्ना फीना मुजम्ममुन, कि हमारे बीच में एक मुजम्मम है, नऊज़ुबिल्ला। मुजम्मम कहते हैं मोहम्मद का ऑपोजिट, कि जिसकी सबसे ज्यादा मुजम्मत हो। कहा कि वो आया हुआ अल्लाह के नबी को लोग कहते, देखे आपको ये क्या कह रही, कहती पता नहीं ये किसको कह रही है, मैं तो मोहम्मद हूं, आई डोंट नो एनी मुजम्मम। कितने रिलैक्स थे, तो सुकून इत्मीनान, हम तो अपनों की बात नहीं बर्दाश्त करते, दूसरों की काम करेंगे। तो अगर अल्लाह का काम करना है ना तो इखलाक भी नबियों वाले होंगे। अल्लाह के नबी ने खतूत लिखे मुशरिकीन को और क्रिश्चियंस को, बादशाहों को, क्या रद्द अमल हुए उनके। परवेज बादशाह था ईरान का, उसने आपका खत फाड़ दिया, अल्लाह के नबी ने क्या किया, आपने कहा इसने खत नहीं फाड़ा, इसने अपनी हुकूमत के टुकड़े टुकड़े कर दिए। और खबर फैल गई कि उसके बेटे ने उसका तख्ता उल्टा उसको मारा और उसकी जगह हुक्मरान हो गया। तो मैं और आप क्या बदला लेंगे उनसे जो अल्लाह के नबी के कार्टून बनाते हैं या मजाक उड़ाते हैं, हम खुद नबी के उसवे पे चलें। हम तो दाढ़ी रखने वाले को खुद कहते हैं कार्टून बने हुए, शलवार टखनों से ऊंची हो, जरा सोचे साहबा का हुलिया, आज कोई इधर आ जाए बाहर, लंबे बाल हो, हुलिया हो, ढीले ढाले कपड़े पहने, तो हम तो खुद कहेंगे ये पता नहीं कौन आ गए। तो लिहाजा अपने आप को बेहतर करना है। अल्लाह ताला कहते हैं ये सब्र आपको देगा। आज अगर हम सुन्नतों पे अमल करें, किसी को जुरत न मिले हमारे नबी को कुछ कहने की, उठने से लेकर सोने तक कितनी सुन्नतों को हम खुद मानते हैं, ये हम खुद से पूछें, तो दूसरे कैसे करेंगे। ये तो हमारा आईना है जो आज तारीख में हमें दिखाया जा रहा है, और आज जो जोग्राफिया चल रहा है, जो आज दुनिया के हालात हैं, यकीन करें ये उम्मत मुस्लिमा को सबक दिया जा रहा है कि अपनी रविश बेहतर करो। आप कहेंगे हजरत इब्राहिम ने भी तो बुत तोड़े थे ना, वो कब तोड़े थे, आखिरी मरहला था, जा दिलों बिल्लती अक्सर, पहले दिन बुत नहीं टूटते, पहले दिलों के बुत तोड़े। दुआ करें कि लोगों के दिल अल्लाह से जुड़ जाएं, कोई भी इससे दूर नहीं रहेगा, वरना अगर अपनी मर्जी के ये काम करेंगे तो फिर आप देख लीजिए कि नतीजा के तबलीग के नाम पर हमने लड़ाइयां ली हुई हैं पूरे दुनिया से, आपस में नहीं मिलते दूसरों को तो क्या कहेंगे। हजरत इब्राहिम के बाप ने धमकियां दी, तुझे मार दूंगा, घर से निकाल लूंगा, और वो आगे से क्या कह रहे हैं, सअस्तग़फिरुलक रब्बी, अब्बा जान मैं तो आपके लिए बख्शिश की दुआ करूंगा। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमें सब्र वाला बनाए। यहां सब्र से मुराद लिख ले रिएक्शनरी नहीं होना, रिएक्शनरी होकर हम दूसरे को मौका देते हैं कि मैं और मारो, थप्पड़ एक मारेंगे तो आगे चार खाएंगे भी ना, सब्र कर लोगे तो बेहतर है। अच्छा बात, लोग दिल के फफोले सब फोड़ते हैं आके इधर, किसी से दिल में कोई ग्रज होता है ना, गुस्सा, अब देख लिया वो दर्स में है तो बस जो बातें उनको ही सुना दी, और कहते हैं फिर लोग आते नहीं, जाते नहीं, बैठते नहीं है। वजह क्या होती है कि लोग इन चीजों को फिर अपने खिलाफ लेते हैं। आपको अगर किसी दिन बात करनी थी, मिसाल देती हूँ कि आप किसी गई जगह, आपने सोचा था, घर वालों का भी स्टार था कि जरा खवातीन को इस्लामिक ड्रेस कोड पे बात कर दे, अव्वल तो नए लोगों में ये बात नहीं करनी, कभी किसी नई जगह पे जाके इस तरह के इश्यूज ना बनाए। पहली दफा अल्लाह की मोहब्बत, पर्पज ऑफ लाइफ, आखरत, मरना, जीना, जन्नत जहन्नम, दो चार बार, फिर आपको कहने आप हर वीक आए, फिर आहिस्ता आहिस्ता एक एक इशू, नमाज का, रोजे का, इसमें अखलाकियात भी आएंगे और उसमें अमल की बातें, वो तो ठीक है, नए लोगों को ना करे, और अगर किसी जगह करनी भी थी बात और आपने देखा कि यहाँ तो आज ज्यादा औरतें बैठी स्लीवलेस में या हाफ स्लीव्स में है या उन्होंने पैंट्स पहनी है, टॉपिक चेंज कर दे, बात ना करें, ये बेहतर है बजाय इसके कि उनको शर्मसार करें। डायरेक्ट हिट होगा ना, लोग अपने कपड़े खींचते रह जाएंगे। वहां बात ना करें, वहां बात करें तो कोई और कर दें, ऐसी कर दें कि उनको बात खुद भी समझ आ जाए लेकिन वो शर्मिंदा ना हो। तो मुखालिफ को शर्मिंदगी से बचाना भी सब्र है, इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं वसबिर वमा सब्रुक इल्ला बिल्लाह, और आप सब्र कीजिए, आपका सब्र तो अल्लाह ही के सहारे पर है। वला तहजन अलैहिम, और इन पर गम ना करें, वला तकु फी दैक मिम्मा यमकुरून, और आप इस तंगी में भी ना पड़े जो के साजिशें ये लोग आपके खिलाफ कर रहे हैं। कौन सी साजिशें? सूरत अनफाल में पढ़ चुके हैं आप लोग, आपके कत्ल की कोशिशें, आपको घर से निकाल दें, ये सारी साजिशें थी। कहा आप इसका फिक्र ना करें, अल्लाह आपको खुद बचा लेगा, ये आपके खिलाफ नहीं अपने ही खिलाफ करें, जिसको उर्दू में आप कहते हैं ना कि ये तो अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आयत 128 में अब देखिए अल्लाह खुशखबरियां देते हैं, इन अल्लाह मअल्लज़ीना तक़व, यकीनन अल्लाह ताला अहले तकवा के साथ है। और किन के साथ है? वल्लज़ीना हुम मुहसिनून, और वो लोग जो मुहसिन है। पीछे से टॉपिक है दाइये दीन, दावत अमल क्या है? पहले खुद तकवा, खुद पे दीन सख्त करो, दूसरों को सौंप दो। हम दूसरों को मुश्किल दीन देते हैं, अपने लिए रुख्सतों वाला दीन रखते हैं। तकवा के कि दावत देने वाला खुद अमल का खूबसूरत नमूना दिखे लोगों को, कोई बात नहीं। और मोहसिन कैसे बन जाए कि दूसरे आपके साथ कोई भी रवैया अख्तियार करे, आप उनके साथ अच्छा ही रवैया रखें। वो कहते हैं ना कि जब अल्लाह बंदे को बचाता है तो कौन उसको मुश्किल में डालेगा, क्या डर है अगर सारी खुदाई है मुखालिफ, काफी है अगर एक खुदा मेरे लिए है। तो देखिए कितने खूबसूरत पैगाम पे सूरत पूरी होती है, मोहसिन बनो, अल्लाह तुम्हें मोहसिन बनाना चाहता। तकवा और एहसान बंदे को खूबसूरत कर देता। बस लोग सवाल करते हैं जी हिदायत तो अल्लाह ने देनी है, हम हिकमत से बात करें ना करें, यानी मेरी सास की तो नसीब में है ही नहीं दीन, तो मैं उसको हिकमत से बात करूं कि ना क्या करूं, तो इसका क्या जवाब है? समझे सवाल? यानी कि लोग कहते हैं कि हिदायत तो अल्लाह देता है, हम फिर हिकमत से बात करेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? तो फर्क यह है कि खिलाता तो अल्लाह, पकाते तो हम है ना, जरिया तो हम ही बनते हैं ना। हदीस में आता है कि दो लोगों पर रश्क जायज है, एक वो जिसको अल्लाह ने इल्म और हिकमत दी और वो इसके मुताबिक फैसले करता है, और दूसरा वो जिसको अल्लाह ने माल दिया और वो दिन रात उसको अल्लाह के रास्ते में लौटाता। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हो इल्मी शख्सियत है, मुफस्सिर कुरान इनका लकब है। एक मौके पर अल्लाह के नबी ने इनको सीने से लगाया और दुआ की कि अल्लाहुम्मा फक्तहु फिद्दीन, कि अल्लाह इसे दीन की हिकमत दे। तो हम सब ये दुआ अपनी दुआओं में शामिल करें। हजरत इब्राहिम की दुआओं में भी ये दुआ है, और अगर आपको फैनी गरीब की सारी दुआएं याद कर चुके हैं तो फिर तो ये दुआ आपके लिए लाजिम है कि अल्लाह तो मुझे हिकमत दे और मुझे दीन की हिकमत दे। इस महफिल से अच्छी महफिल कोई नहीं जहां से हिकमत मिले, हिकमत मोमिन की गुमगुश्ता मीरास है, जहां से मिलती है ले ले। बड़े बड़े झगड़े इस चीज से खत्म हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला से ये दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हमें भी बेहतरीन तरीके से, हकीम तरीके से दीन की बात करने वाला बना दे।
ادع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون